ده بالنسبة للرسول. كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. कुछ साहिबान के पांच सवालात हैं जिसके बारे में मुझसे कहा गया था कि इनके जवाब आज मैं दे दूं। पहला सवाल अरवाह से गुफ्तगू के सिलसिले में, ये किसी खातून ने कल गालिबन मुझसे ये सवाल किया था कि अरवाह से गुफ्तगू करना मुमकिन है और जो लोग किस्म के काम करते हैं क्या वो जायज़ है। जैसे पिछली किसी गुफ्तगू में मैंने गुजारिश की थी कि मौत के बाद रूहें तो हम में से हर एक आदमी को मालूम कि आलम बरज़ख में क़याम करती हैं, और आलम बरज़ख के दो तबकात हैं। एक तबके में वो लोग जो नेक काम करते रहे हैं उनकी रूहें, और दूसरे तबके में ऐसे हजरात जो नेकी के उस मकाम पर नहीं उनकी रूहें रहती हैं। इसी तरह बहुत सी रूहों को इजाज़त होती है कि वो ज़मीन के साथ राब्ता कायम रखती हैं। कुछ रूहों पर फॉर सर्टन रीजंस पाबंदी लग जाती है, उनका ज़मीन के साथ राब्ता जो है वो ममनू हो जाता है। तो वो रूहें जिनका ताल्लुक कायम रहता है ज़मीन के साथ, उनके साथ राब्ता कायम हो जाता है। लेकिन शर्त ये होती है कि जो इंसान उन रूहों के साथ राब्ता कायम करना चाहता है, गुफ्तगू करना चाहता है, उसकी अपनी रूह लताफत और बालीदगी के एक ख़ास मकाम पर हो, और वो लताफत और बालीदगी का मकाम इंसान को ख्यालात की प्योरिटी और नेकी के नतीजे में हासिल होता है। ये जो अक्सर औकात मैं अपनी गुफ्तगू में एक चीज़ पर बहुत एम्फेसाइज करता हूँ, दिल को हमेशा साफ रखिए, किसी किस्म का कोई कीना, किसी किस्म की कोई कदूरत दिल में न रहने पाए, आईने की तरह चमका के रखिए दिल को। ये हमेशा जब भी आपने वज़ाइफ ज़िक्र अज़कार और इबादात के सिलसिले में गुफ्तगू की तो उस पर मैंने मेरा मेजर एम्फेसिस इसी बात पर रहा कि वजह यह है कि जब तक कि हमारा दिल, इसलिए आज मैंने लफ्ज़ प्योरिटी का इस्तेमाल किया था, पाकिजगी की बात नहीं कर रहा था। प्योरिटी उसी वक्त आएगी जब उसके अंदर ख्यालात में कदूरत और कीना अब बायस शामिल नहीं होगा, वो प्योर है। तो जब ये प्योरिटी आती है ख्यालात में तो दिल साफ होता, या दिल के साफ होने के नतीजे में प्योरिटी आती है, जैसे आप उसे कहना चाहें। ये बुनियादी रिक्वायरमेंट है रूह की बालिदगी और लताफत के सिलसिले में। और उसके दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि इंसान नेक हो, तो इसके नतीजे में रूह लतीफ़ हो जाती है ख़ास डिग्री तक, और उसकी परवाज बुलंद होती है, दूर तक होती है। यह मकाम है जहाँ पे रूहों के साथ राब्ता कायम हो जाता है और उनसे गुफ्तगू मुमकिन होती है। लेकिन ये मुनासिब नहीं कि ये पब्लिकली ये काम किए जाएं, क्योंकि इसमें इम्कान ये है कि खल्क़े खुदा भटक जाएगी। जिस तरह नजूम बतौर एक साइंस के मौजूद है, उससे इनकार नहीं, साइंस है बाकायदा। जादू बतौर एक साइंस के का वजूद है, उससे इनकार नहीं। लेकिन रब ताला ने मुसलमान को इनके करीब जाने से मना किया। उस मना करने का मतलब ये नहीं कि इनका वजूद नहीं। इसी तरह अरवाह से गुफ्तगू का हो जाना मुमकिन है, लेकिन इसे पब्लिकली करना मुनासिब नहीं है। कश्फ जिन लोगों को हासिल होता है वो टाइम एंड स्पेस से आजाद हो जाते हैं, दे कैन सी बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, लेकिन उन मालूमात को आम करना मुनासिब नहीं है। कश्फ के जरिए आलम अजायबात की सैर मुमकिन है, आसमानों की सैर मुमकिन है, तहे जमीन सैर मुमकिन है, लेकिन वहां पर देखी गई चीजों को आयां करना मुनासिब नहीं है। बाज़ औक़ात सजा के तौर पर कश्फ सल्ब कर लिया जाता है। इसी तरह रूहों से गुफ्तगू करना और फिर उसे सरेआम करना वो मुनासिब नहीं है, उससे परहेज किया जाना चाहिए। बाज़ औक़ात रूहों से जब गुफ्तगू होती है तो बहुत से ज़ाती राज भी आया हो जाते हैं, तो वैसे ही बदनामी है कि किसी के राज को अफशा कर दिया जाए, वो डिसऑनेस्टी है, तो गुनाह है, वो नहीं होना चाहिए। इसी ज़िम्न में मुझे एक साहब याद आए जो एक सरकारी बैंक के इंतहाई आला ओहदे पर फाइज थे। तो जब कभी मैं कराची टूर पर जाता था दफ्तरी काम से तो उनसे मुलाकात होती थी, तो शुरू में मेरी समझ में ये नहीं आता था कि हर मुलाकात में वो गुफ्तगू को मोड़ कर उसका रुख रूहों के इल्म के तरफ कर लेते थे, किसी न किसी तरह गुफ्तगू को वो टर्न दे देंगे कि रूहों की गुफ्तगू शुरू हो जाए। और वो बहुत देर मेरी समझ में नहीं आया कि हर नशिस्त में ये रूहों को क्यों डिस्कस करते हैं मेरे साथ। एक बार मैं गया, उनको उनसे ताल्लुकात थे साथी, तो उन्हें बता दिया करता था कि कराची आ रहा हूँ मैं, तो उन्होंने एयरपोर्ट से मुझे पिक किया, कहने लगे कि अभी खाने का टाइम हो रहा है तो लंच करते हैं, फिर वो मुझे कराची के 5-स्टार होटल में ले गए। वहाँ उसके डाइनिंग हॉल में हम बैठे थे, वो तो गुफ्तगू कर रहे थे ऐसी जनरल, तो थोड़ी देर में एक और साहब आए, तो इन्होंने उन्हें देख के दूर से वेव किया, तो कहने लगे ये साहब कैसे आ गए इस वक्त यहाँ। तो मुझसे तारफ कराया, वो दुनिया की एक वन ऑफ द लीडिंग एयरलाइंस उसके जनरल मैनेजर फॉर पाकिस्तान थे। आई कुड क्लियरली मेक आउट इट इज़ ऑल प्री अरेंज्ड, इनकी मुलाकात थी, बैठ गए। तो मुझसे उन बैंकर ने तारफ कराया कि साहब ये फलां एयरलाइन के जनरल मैनेजर हैं फॉर पाकिस्तान, और इनकी एक और बड़ी खूबी ये है कि ये रूह से गुफ्तगू कर लेते हैं। तो मालूम ये हुआ कि उनके एक साहबजादे हैं कोई 8-10 साल के, उसको एज मामूल वो यूज करते थे और उसके जरिए से रूहों को बुला लेते थे और उनसे गुफ्तगू करते थे। तो इन्होंने बहुत से किस्से बताया कि मैंने खुद रूहों से बात की। उसमें हमारे साबका वजीर आजम और साबका सदर जो इंतकाल कर चुके हैं उनकी रूहों से भी गुफ्तगू थी। तो एक सदर के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने उनसे गुफ्तगू के दौरान, ये बैंकर ने बताया कि मैंने उनसे गुफ्तगू के दौरान ये इन्फॉर्मेशन ली जो बड़ी जाती थी उनकी। तो उनको मैं ये कह रहा था कि देखिए इसलिए मैं मना करता हूँ कि रूहों से गुफ्तगू के चक्कर में ना जाइए, अब आपने तो उन साहब से ये गुफ्तगू कर ली उनकी रूह से और उनके बारे में ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली, अब आप उसे पब्लिक किए जा रहे हैं, तो ये डिसऑनेस्टी है, गुनाह इसका आपके कंधों पर है। तो इसलिए मैं सबसे मना करता हूँ कि अगर कभी ऐसा इत्तफाक हो जाए कि रूहों से رابطہ قائم ہو جائے تو ان سے بجائے پرسنل انفارمیشن لے کے پبلک کرنے کے آپ پہلے گفتگو کر لیجیے. اور پھر یہ ہے کہ آپ اس کھیل میں پڑے ہی کیوں, اس سے زیادہ بہتر کام موجود ہیں کرنے کو. تو اللہ تعالیٰ اگر کل کو آپ کو صاحب کشف کر دے تو آپ بزرگان دین کی روحوں سے ملاقات کیجیے عالم کشف میں, بہت تمانیت حاصل ہوتی. اور اگر آپ کشف کے بہت ہی اعلیٰ مقام پر چلے جائیں تو پھر پیغمبروں کی روحوں سے ملاقات کیجیے. انسان کے اندر جو سرخوشی کا عالم ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی عجابات عالم میں ایسی ایسی چیزیں ہیں, اس کی سیر کیجیے کشف کے ذریعے سے. تو روحوں سے گفتگو کر کے اور ان سے معلومات لے کے کیا کریں گے اس کو, سوائے اس کے کہ آپ کا نفس پھلے پھولے کے آپ نے یہ پوشیدہ بات معلوم کر لی. در حقیقت اس سے فائدہ تو کچھ ہوگا نہیں, لیکن اگر آپ نے آسمانوں کی سیر کی کشف کے ذریعے یا زمین کی تہوں کی سیر کر لی تو اللہ پر ایمان پختہ ہوتا چلا جائے, اس کی ربوبیت کی شان کے کچھ ہلکی سی جھلک دکھائی دینے لگتی ہے. اور اللہ کی بندگی کا یقین ہونے لگتا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے, تو اس کا فائدہ ہوگا. تو ان کھیلوں میں کیا پڑھنا, لیکن ایسا یہ ہے کہ روح سے گفتگو کرنا بھی ممکن ہے لیکن کرنا مناسب نہیں ہے. ایک دوسرا سوال حفظ قرآن اور درس سے متعلق تھا, میں نے شاید کسی گفتگو کے دوران پہلے عرض کیا تھا کہ اب اس پر تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتے. قرآن کا حفظ کرنا بہت بڑا اعزاز ہے اور قرآن کا سمجھنا بہت بڑی سعادت بھی ہے اور ایک بڑی رحمت بھی ہے اللہ کی, لیکن اس کا کیا کیجئے کہ ہم اپنے بچوں میں سے ایک کو حافظ بنانا چاہتے ہیں, اس کے پیچھے غرض کوئی اور ہے. غرض یہ ہے کہ وہ حدیث کے مطابق ہمیں جنت مل جائے گی. اب شاہ صاحب نے اگر اپنے بچوں میں سے ایک کو حافظ بنا دیا تو جنت تو پکی ہو گئی. اب شاہ صاحب جو جی چاہے کرتے رہیں, لوگوں کے حق مار لیں, جھوٹ بول لیں, دغا کر لیں, فریب کر لیں, تو جنت تو مل ہی گئی, اب کیا غم ہے. یہ رویہ درست نہیں. جو ایک گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ ابھی ہائی اسکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت ٹیلی ویژن کا تو وجود تھا نہیں, اور یہ ایف ایم ریڈیو بھی نہیں ہوا کرتے تھے, صرف ریڈیو پاکستان ہوتا تھا, اس کے اسٹیشن تھے مختلف شہروں میں. تو گرمیوں میں صبح 6:30 بجے اور سردیوں میں صبح 7 بجے 10 منٹ کا ایک ہی مذہبی پروگرام آتا تھا 24 گھنٹے میں, جس میں 5 منٹ کی تلاوت ہوتی تھی کلام پاک کی اور اگلے 5 منٹ شاہ بلیغ الدین اس کا ترجمہ بیان کیا کرتے تھے. تو 24 گھنٹے میں صرف 10 منٹ کا مذہبی پروگرام نشر ہونے کا نتیجہ ایک یہ تھا کہ معاشرے میں رشوت لینے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی, اور جو کوئی رشوت لیتا تھا وہ اپنے اس رشوت لینے کے فعل کو اپنی اولاد سے بھی چھپانے کی کوشش کرتا تھا, رشتہ داروں سے, محلے والوں سے, سب سے چھپانے کی کوشش کرتا تھا کہ کسی کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ میں رشوت لیتا ہوں. अगर किसी इंसान की औलाद में से कोई बेटा किरदार के उस आला मकाम पर नहीं होता था जहां होना चाहिए, तो वो इस शर्म के मारे अपनी पुरानी रिहायशगाह छोड़कर चला जाता था कि मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरी औलाद में बेटा बदमाश निकल आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तकरीबन 23 चैनल्स ऑन एयर हैं और बाकी कुछ आ रहे हैं, फिर FM रेडियो बेपनाह हैं, इन पर होने वाले फिर दो मजहबी चैनल भी हैं जहाँ पर 24 घंटे मजहबी प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले कुरान की दर्स व तदरीस का सिलसिला भी जारी है। इन तमाम दीनी खिदमात के बावजूद सूरत हाल ये है, 180 डिग्रीज का चेंज आया है कि जो आदमी रिश्वत नहीं लेता वो मुंह छुपाए फिरता है कि लोग क्या कहेंगे कि मैं इतना कमतर आदमी हूँ, ऐसी कमतर पोजीशन पे हूँ कि रिश्वत भी नहीं ले पाता, और अगर औलाद में से एक आध बच्चा गुंडा नहीं तो मुंह छुपाए फिरता है कि मैं कैसे जीऊँ यहाँ सर उठा के। यहाँ सूरत हाल ये आ गई, उसकी वजह बुनियादी ये है, दरस कुरान में हिफ्ज़ कुरान में तो कोई ऐसी बात नहीं, वो तो आज भी उसी तरह बायस सआदत और बायस निजात हैं जैसे पहले थे। फर्क हम लोगों का आया है कि हमारे कंसेप्ट्स चेंज हुए हैं, हम दरस कुरान अटेंड करते हैं सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए कि अगर किसी महफिल में हम बैठें तो मज़हब पर फरफर बोल सकें और लोग इम्प्रेस हों कि हम बहुत नेक आदमी हैं। जाहिरदारी पर सारी तवज्जो हो गई। मैं ये समझता हूँ बजाय इसके कि ढेरों इल्म हासिल कर लिया जाए और उस पर अमल ना हो, बेशक दो लफ्ज सीखे जाएं लेकिन उस पर अमल कर लिया जाए। अगर पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बजाय एक आयत ही हमने हिफ्ज़ कर ली और उस पर पूरी तरह अमल कर लिया, मैं ये समझता हूँ बायस निजात हो जाएगा। बच्चों को हाफिज जरूर बनाइए, लेकिन हाफिज इस सेंस में नहीं बनाइए कि उसे कुरान सिर्फ याद है, उसे कुरान पर अमल का हाफिज भी बनाइए। तो ये जो एक किस्सा ये हो गया है कि हमारे अमाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये गर्ज कि हमें जन्नत मिल जाएगी, ये इतना आला दर्जे का अमल नहीं रहेगा। अगर इसको ये समझ कर इस पर अमल कर लिया जाए अल्लाह के किसी भी हुक्म पर कि ये मेरे रब का हुक्म है और बंदगी मुझ पर फर्ज है, अपने आका का हर हुक्म मुझे मानना है, तभी मैं उसका बंदा कहलाने का हकदार हूंगा, तो उससे जन्नत तो मिलेगी, यकीन मिलेगी हिसाब किताब होने के बाद, लेकिन कयामत के रोज मैदान हशर में हमारी पेशानी भी चमक रही होगी कि हम वो रब जो इस वक्त कुर्सी इंसाफ पे बैठा है और हिसाब किताब कर रहा है हमारा, हम उसके बंदे हैं। और बंदे भी कैसे कि जिन्होंने उसके हुक्म को हर जदा और सजा से बालातर होकर माना, सिर्फ इसलिए माना कि वो हमारा रब है, हमारा आका है। तो ये हिफ्ज़ कुरान और दर्स को जरूर अपनाइए, लेकिन जज्बा उसके पीछे ये रहे, अहकामात इलाही से वाकफियत हो जाए, इसलिए कि आका के हुक्म को सुनना, समझना और ओबे करना ही बंदगी है। अगर तो हिफ्ज़े कुरान और दर्स हमें बंदगी की तरफ ले जाए तो ये बायस सआदत होगा। तो उस जज्बे से जरूर बच्चों को हिफ्ज़ कराइए, लेकिन अगर उसके पीछे लालच सिर्फ ये हो कि हम आजाद हो जाएंगे कि कुछ भी करते रहें, जन्नत हमारी पक्की है, वो फेल कोई उस आला दर्जे का नहीं है जिस पे मुसलमान के अफाल को और अमाल को होना है। एक और खत आया था, कल ही रिसीव हुआ, इस्लामाबाद से खत था। तो किसी खातून ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि उनकी कोई बॉस हैं, उनके पास कुछ माफाकुल फितरत कुवतें हैं कि वो ख्यालात भी जान लेती हैं और फिर वो चैलेंज करती हैं कि मेरी आंखों की तरफ देखो, तो उनकी आंखों में कोई देख नहीं पाता, इंसान टांगें कांपने लगती हैं। तो मेरी तो उन खातून से गुजारिश ये है कि ये माफाकुल फितरत कुवतें हासिल तो होती हैं। उन्होंने बल्कि बहुत ज़रा सा शिद्दत से अल्फाज लिखे थे कि अगर मुझे सज़ा का खौफ ना होता तो मैं ये देख कर के वलीला ऐसे होते हैं तो मैं तो शायद इस्लाम से तायब हो जाती, माज़ल्ला, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो मैं उन खातून से इस गुफ्तगू के ज़रिए ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बीबी जो अल्लाह के वली हैं, जो दरवेश हैं, वो ना तो ऐसे चैलेंज थ्रो करते हैं कभी और ना इतने सख्त गिर होते हैं ज़ाती मामलात में। हाँ, वो सख्त गिर होते हैं हदुदुल्लाह के सिलसिले में, लेकिन ज़ाती मामलात में और समाजी ज़िंदगी में वो सख्त गिर नहीं होते, बहुत नरम लोग होते हैं, इसलिए कि उनके दिल में खौफ खुदा होता है। फ़र्क सिर्फ हमारे अपने कंसेप्ट्स का है कि हम इसलिए यहाँ बार बार एक बात पे मैं जोर देता रहता हूँ आप सबके साथ, हर वो आदमी जो ज़रा सी भी माफाकुल फितरत कुवत का इजहार कर दे हम उसे वली अल्लाह मान लेते हैं। वली अल्लाह की तारीफ ये नहीं है, जिस तरह दयानतदारी की तारीफ सिर्फ ये नहीं है कि इंसान माली मामलात के अंदर इंसाफ पे चल रहा हो, वो दयानतदारी नहीं है। दयानतदारी की जैसी तारीफ ये है कि इंसान अपनी जिंदगी अल्लाह की मुकर्रर करदा पैरामीटर्स के अंदर रह के गुजारे तो वो दयानतदार है, बददियानती नहीं कर रहा। दयानतदारी की तारीफ ये है कि जिस मामले में इंसान हाथ लगाए उससे मुतालिक अल्लाह के कायम करदा हदूद के अंदर रह के अगर फराइज सर अंजाम देता है तो बंदा दयानतदार है, ये तारीफ है। इसी तरह वली की पहचान ये नहीं कि वो उसके पास कोई माफाकुल फितरत कुवतें होंगी, बड़े बड़े आला दर्जे के वली अल्लाह आपको मिलेंगे लेकिन वो आप पे करामात का इजहार नहीं करेंगे, इसलिए कि करामत का जाहिर करना तो वैसे ही मना है। वली अल्लाह की पहचान तो ये है कि वो कुरान और सुन्नत पर पूरी तरह अमल पैरा होता है। बकौल जनाब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कि जिसने एक छोटी से छोटी सुन्नत भी तर्क कर दी वो वली अल्लाह नहीं है। तो रब ताला तो ये हुक्म देता है कि मोमिन मोम की तरह नर्म होता है अपने साथियों के बारे में। जब अपने साथियों के साथ मुआमलात करता है तो वो मोम की तरह नर्म होता है, लेकिन काफिर के लिए फौलाद से ज्यादा सख्त। तो जो आदमी आपके लिए मोम से ज्यादा नर्म है वो आपको चैलेंज कैसे थ्रो कर सकता, वह आपको अपनी आंखों से डरा कैसे सकता। अगर यही हमने मयार माना, जो कि माना हुआ है, इसलिए हम भटक जाते हैं। तो हिंदुइज्म में जो साधु है उनकी आंखों को देखिए, उसमें आपको ऐसी चीजें बहुत दिखाई देंगी। लेकिन इसके बरक्स कोई जरा ये तो बता दे कि जनाब दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज साहब, हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये वो बुजुर्ग हैं जिनके वली अल्लाह होने में किसी को शुबा नहीं है। जिन लोगों की इनसे मुलाकात हुई है, अगर उनको इन बुजुर्गों की आंखें याद हैं, तो आंखों के अंदर नरमाहट बेपना मिलेगी आपको। चेहरे पर जलाल हो सकता है, जैसे बाबा फरीद गंजशेखर रहमतुल्लाह अलैह, इनकी जो दुनियावी शक्ल है उस पर बेपना जलाल है, आंखों में बेपना गहराई है। जनाब दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब की जो दुनियावी शक्ल है वो रोबदार है, लेकिन आंखों में इंतहाई नरमी मिलेगी आपको। वो दिल का अक्स है, दिल से वो बहुत मेहरबान लोग हैं ये सब। तो दिल का अक्स उनकी आंखों में दिखाई देता है, बहुत ही नरमाहट दिखाई देती है। ये लोग हरगिज हरगिज वली अल्लाह नहीं है जो खल्के खुदा को धमकाते हैं या खल्के खुदा को चैलेंज थ्रो करते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को अपना दोस्त नहीं रखता, उसको अपनी मखलूक बहुत अजीज है। वो तो उन लोगों को अपना दोस्त रखता है जो उसकी मखलूक के लिए मेहरबान है। तो इस धोखे में मत आइए, वो वली अल्लाह नहीं है। और उनके शर से बचने का एक आसान सा नुस्खा मैं अर्ज कर देता हूं कि रोजाना जब घर से ऑफिस के लिए निकलें काम पर जाने के लिए, तो रास्ते भर सूरह इखलास का विर्द दिल में करते रहें। मैं इन खातून से मुखातिब हूं जिन्होंने लेटर भेजा था मुझे। इंशाअल्लाह ताला वो खातून आपसे खौफजदा हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप उनसे खौफजदा हों, वो आपसे खौफजदा हो जाएंगी। वो एक ही दिन पढ़ने में आपको फर्क पता चल जाएगा, और आपकी मौजूदगी में ना उनकी आंखों की वो सुर्खी बाकी रहेगी, ना उनकी आंखों के अंदर वो शरारे जो आपको दिखाई दिए हैं वो कभी दोबारा दिखाई देंगे आपको। कलाम इलाही में ये तासीर है, और खास तौर पर सूरह इखलास में, इसलिए कि वो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है। तो वह अपने आप को वाहिद और यकता रखता है हमेशा। तो उसकी वहदानियत यकता होने के ऐलान को जब आप व्यर्त करते हुए जाते हैं, तो जितनी ऐसी सिफली कुवतें हैं वो सब की सब जेर हो जाती हैं। इसमें इस्तस्ना कहीं है नहीं, नो एक्सेप्शन एट ऑल। आप किसी राहिब, अब जो नॉन मुस्लिम्स के अलावा ऐसी कुवतों के मालिक हैं, उनमें सबसे पावरफुल लोग यहूदियों में राहिब हैं, इनकी परवाज बहुत बुलंद है। सबसे ज्यादा पावरफुल लोग रूहानी तौर पर नॉन मुस्लिम्स में यहूदियों में मिलेंगे आपको। और अगर आपने देखना है कि कलाम इलाही का एजाज क्या है, तो मैं ये हर एक को खुली इजाजत देता हूं सूरह अखलास का विर्द करे, और ऐसे किसी भी इंसान के सामने जाके बैठ जाए और तमाशा देख ले। हिंदुओं में जो साधु हैं, उनमें भी बहुत से पावरफुल लोग गुजरे हैं। एक तो किस्सा वो आपने कशफुल महजूब में कल दिन पढ़ा होगा, जो दाता साहब से जिसका वास्ता पड़ गया था। लेकिन कलाम इलाही के सामने वो भी नहीं ठहरते थे। तो इनसे खौफजदा मत होइए और ना ही ये गुमान कीजिए कि वो वली अल्लाह हैं। उनका वलायत से कोई ताल्लुक नहीं है। चौथा सवाल तो वलायत और वली अल्लाह ही के सिलसिले में था, वो तो मैंने अर्ज कर दिया। एक और सवाल दुनियावी तालीम के सिलसिले में किसी ने कल मुझसे किया था। अब इसका बराह रास्त तो दीन से कोई ताल्लुक नहीं सवाल का, लेकिन मुसलमानों के मुस्तकबिल से ताल्लुक जरूर है। पाकिस्तान में जो हमारी सूरत हाल होती जा रही है उसके बारे में लोग बजा तौर पर बेचैन हैं। फिर हमारे मुख्तलिफ चैनल्स पर दानिश्वर हजरात आके मुख्तलिफ जो हमारे मसाइल हैं उन पर इजहार ख्याल करते रहते हैं। वो यकीनन ध्यानदाजी से करते हैं और अल्लाह ने जो कुछ उन्हें समझ और अक्ल और इल्म अता फरमाया है वो उसको बरूए कार लाते हुए उन मसाइल का हल पेश करते रहते हैं और अच्छी खिदमत कर रहे हैं कौम की। मेरे नज़दीक जो कुछ मसाइल ये हैं कि ना तो आज की पैदावार है, ना ही ये पिछले 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल की पैदावार है, ना ये पिछले 4-5 अशरों की पैदावार है। अगर इसका सही अंदाज़ा करना हो तो इसको यूं देखिए कि 14 अगस्त 1947 में हम क्या थे, हमारी सोसाइटी क्या थी और हमारी सोशल वैल्यूज क्या थी, सोशल बिहेवियर्स हमारे क्या थे, इन सब का हमें एक रिव्यू करना पड़ेगा और उसके बाद हम हर 5 साल के बाद मामलात को मैयर कर लें और यार्ड स्टिक बनाए हम 14 अगस्त 1947 को। आहिस्ता आहिस्ता अगर हम चलते चलते 2007 तक आ जाएं तो एक कंपैरिजन हमारे यहाँ वर्कआउट हो जाएगा। जिस तरह हम अपने प्रोफेशन में मुख्तलिफ ग्राफ बनाते हैं प्रोग्रेस का या अदरवाइज डिक्लाइन का, तो एक ग्राफ बनेगा हमारे यहाँ। तो एक बड़ी हैरानकुन सिचुएशन हमारे सामने आने लगती है कि किसी भी मुआशरे की बुनियाद वो है कानून की पाबंदी। तो अगर हम रेस्पेक्ट फॉर लॉ अगर उस पहलू का हम देख लेंगे तो बड़ा शार्प डिक्लाइन दिखाई देगा और वो ग्राफ हमारा कांस्टेंट डिक्लाइन दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने सोसाइटी का नज़्म व ज़ब्त का एक पहलू तो देख लिया, क्योंकि नज़्म व ज़ब्त आएगा रेस्पेक्ट फॉर लॉ से। इसी तरह वैल्यू फॉर मनी या वैल्यू फॉर मटेरियलिस्टिक वैल्यूज वो अगर हम देखें तो एक बड़ा शार्प डिक्लाइन दिखाई देता है मटेरियलिस्टिक वैल्यूज विज़ मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज अपनी कदर खोती गई हैं बड़ी तेजी से और मटेरियलिस्टिक चीजों कि वैल्यू हमारी नज़र में बेपनाह होती चली गई है और ये कांस्टेंट डिक्लाइन है। अब उसको देखना ये होगा कि इसकी बुनियादी वजह क्या रही। तो मेरे ख्याल में इसकी एक बुनियादी वजह तो ये है कि हर पैदा होने वाला बच्चा जवान होते तक ना उस्ताद से इन दो चीजों को सीख पाता है और ना माँ बाप से सीख पाता है। इसकी छोटी सी एग्जाम्पल मैं रिपोर्ट कर दूं, अगर मैं गाड़ी में जा रहा हूं और मेरे साथ मेरी फैमिली बैठी है तो मैं रेड सिग्नल देखता हूं, उसके बावजूद मैं गाड़ी नहीं रोकता, चलाता चला जाता हूं। ये तो सही है कि मैं बच्चे को तालीम नहीं दे रहा कि तुम रेड सिग्नल है गाड़ी गुजार लो, इनडायरेक्टली मैंने उसे तालीम यही दी है कि यू डोंट हैव टू रेस्पेक्ट रेड सिग्नल, आप जाइए, आपको कौन रोकता। मेरी फैमिली मेरे साथ बैठी है, अगर किसी कानून की खिलाफ वर्जी करने पर मुझे पुलिस कांस्टेबल रोक लेता है तो मैं उसको एक जुमला छूटते कहता हूँ, अभी तुमने क्यों रोका मुझे, और अगर पंजाबी में कह रहा हूँ तो मैं तो इतना भी अखलाक नहीं दिखाऊंगा, मैं तो सीधा उससे कहूँ तू क्यों रोके यार मैं, तो वो कहता है आपको मालूम है आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, फिर क्या हुआ जानते नहीं मैं कौन हूं। अगर ज्यादा ही बात है तो मैं अपने बच्चे के सामने वॉलेट में से 100 रुपए का नोट निकाल के उस पुलिस वाले के हाथ पर रख दूंगा। मैं रियलाइज नहीं कर रहा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एजुकेशन आई एम इम्पार्टिंग ऑन माय चाइल्ड। इसी तरह जो हमारा सिलेबस है वो बच्चों को जब वो प्ले ग्रुप में होते हैं सिर्फ एक चीज सिखाता, वह है बाबा ब्लैक शीप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये देखिए हमने भी पढ़े थे उस उम्र में, वो आज तक याद है। लेकिन वो कौमें जो बावजूद मुसलमान न होने के अरूज को हैं और उनके अरूज को देख के हम कहते हैं कि बेहया लोग, उनके सिलेबस को किसी वक्त अगर हम देखें तो एक अजीब चीज दिखाई देती है। उनका जो प्ले ग्रुप तो छोड़ दीजिए आप, जो नर्सरी और प्री एजुकेशन, उसको प्री स्कूल एजुकेशन कहते हैं, जो नर्सरी और प्री स्कूल एजुकेशन के सिलेबस को देखें तो अगर मुझ जैसा अनपढ़ आदमी देखेगा कि ये वक्त जाया करते हैं मेरे बच्चों का, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी देख के परेशान हो जाएगा कि कौम की तामीर किस तरह हो रही है इनके यहाँ। उनके यहाँ एक अजीब व गरीब सिलसिला ये है कि जहाँ बच्चा नर्सरी में पहुँचा वो किताब को तो हाथ ही नहीं लगवाते बच्चे को, उनकी जो उस्ताद हैं राधा उस्तानियाँ कहना चाहिए, वो बच्चों को दिखाती हैं स्कूल में कि ये दरख्त है बच्चों, ये हमें धूप से बचाता है, और एक दरख्त दिन भर में इतनी ऑक्सीजन पैदा करता है जो 24 बच्चों के सांस लेने के लिए काफी है, और ऑक्सीजन ऐसी चीज है जो हमें जिंदा रखे हुए है, ये मॉइस्चर हवा में छोड़ता है, उससे बादल बनते हैं, बारिश बरसाने का सबब बनता है। तो इस तरह से वो दरख्त के तमाम फवायद गिनाते हैं और आखिर पर एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है कि ये दरख्त हमारी इतनी खिदमत करता है। तो इसकी तमाम खिदमत के जवाब में कम से कम हम एक काम तो कर सकते हैं कि वी शुड लुक आफ्टर दिस ट्री, वी शुड वाटर दिस ट्री। अब ये उस बच्चे के जहन में आया कि दरख्त बहुत यूजफुल चीज है, इसको काटना नहीं है, मेरे घर में चूल्हा जले या न जले, घर में बैठने के लिए कुर्सी हो या न हो, इसे नहीं काटना। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोल को दिखा के वो ऐसी ही कहानी बयान करती थी क्या, अब यहां से सिविक सेंस डेवलप होना शुरू होती है इंसान के अंदर। तो जब तक वो होश संभालता है और फिर घर में देखता है कि बाप रात को 2 बजे आ रहा है पिकेडिली से स्टेज ड्रामा देख के, दूर दूर तक ना ट्रैफिक है ना कोई पुलिस वाला है ना कोई और है, लेकिन ट्रैफिक लाइट रेड हुई है और बाप खड़ा है इंतजार में, तो अगर कह भी दे के आप चलें इसको कौन देख रहा है, कि नो लॉ इसलिए बनाया है कि आई शुड गो बाय, इसलिए नहीं कि इसे वायलेट कर दिया जाए। अब ये नक्श हो जाएगी बच्चे के जहन में। वो मेरे अपने बच्चों ने एक बार मुझे इंतहाई शर्मिंदा कर दिया, उसके बाद मैं अवॉइड करने लगा अपने बच्चों के साथ गाड़ी में बैठने से, इसलिए कि वो आदत तो मैं छोड़ नहीं सकता, शर्मिंदा होना नहीं चाहता कि मेरी मूछ नीची होती है, और तालीम हासिल करना वैसे ही मुझे दुश्मनी है बचपन से तालीम से। हुआ ये था कि एक बार ड्राइवर छुट्टी चला गया तो बच्चों को स्कूल से लेने के लिए खुद मैं ऑफिस से उठ के आया, पुरानी बात है मेरे घर भी अराउंड 76-77। तो बच्चों ने स्कूल से बाहर निकलते ही आइसक्रीम खरीदी, मैंने भी उससे कुछ ही शायद ली, सब खाने लगे और मैं बच्चों से मजाक कर रहा था गाड़ी ड्राइव करता हुआ। उस बेख्याली में जो चीज मैं खा रहा था उसका रैपर जो है वो मैंने पकड़ा, विंडो रोल डाउन करके बाहर फेंकने लगा, तो वो जो बड़ी बच्ची है मेरी उसको, वो मेरा ख्याल क्लास 4 में या 5 में होती थी, तो एकदम से उसने मेरा बाजू पकड़ा के, अबू क्या कर रहे हैं, क्यों क्या हुआ भाई, मेरे लिए तो पूरी सड़क मेरा डस्टबिन है, हु कैन स्टॉप मी, आप कहां फेंक रहे हैं सड़क पे। मैंने क्यों बेटे, इसको और कहां रखूं, इसमें रखें यहां गाड़ी में, घर जाके डस्टबिन में फेंकें आप। करण महमूद मेरे साथ बैठे थे, मुझे कहने लगे शाहजी और पढ़वाओ बच्चों को। बात यह है कि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिस स्कूल में ये पढ़ रहे हैं वहां गवर्नमेंट टीचर कोई ऐसी आ गई हैं जो इनकी तरबियत सही नहीं कर रही, इनको बिगाड़ रही हैं कि सड़क पर गंदगी फेंके नहीं। वही तो हमने तो यही सीखा, घर की गंदगी इकट्ठी की बाहर सड़क पर फेंक दी तो सही है, घर साफ हो गया मेरा, घर को अंदर से धोया तमाम सड़क गीली कर दी, लोग फिसलते रहे वो ठीक है, उनका प्रॉब्लम मेरा थोड़ी है। अब ये जो चाइल्ड एजुकेशन है, तो जिन्होंने ये सवाल किया था मुझसे, मैं उनसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह आपको तौफीक दे और अल्लाह आपको कामयाबी भी अता फरमाए, ये दुआ है मेरी, आप चाइल्ड एजुकेशन में PhD कर लीजिए। लेकिन वो PhD सिर्फ डॉक्टर अपने नाम के साथ लगाने की हद तक न करें, बल्कि उसमें जो कुछ लर्न करें आप उसको एक्सरसाइज कर लीजिए आगे, अपने घर में भी और जहां आप लोगों को एजुकेट करते हैं वहां भी इसको फैला दीजिए। अगर हम चाइल्ड एजुकेशन को ठीक कर लेंगे तो उम्मीद ये है कि 25 साल के बाद हमारे ये मामला ठीक होने शुरू हो जाएंगे। एक एक मसले को पकड़ के उसके ऊपर तकरीरें करने से कुछ नहीं होगा। दानिश्वर हजरात बेचारे अपनी किसी कोशिश कर रहे हैं बहुत अरसे से, लेकिन मामलात बजाय समरने के दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। ये उसी वक्त ठीक होगा जब घरों के अंदर हमारी औलाद दयानतदारी के नमूने देखेगी। हम लोग कभी एक तबके को बुरा कहते हैं, कभी दूसरे तबके पे इल्जाम धर देते हैं। एक जमाना था कि हम ब्यूरोक्रेसी को बुरा कहते चले जा रहे थे, हर इल्जाम उन पर था। आज किसी और सर्विस पर है, बल्कि किसी और पर हो जाएगा। इसमें एक बड़ा छोटा सा सवाल है कि ये लोग आखिर हैं कौन? जो सिविल सर्वेंट है वो, या कोई फौजी है, या कोई जज है, या कोई पटवारी है, ये है कौन? ये हमारा ही तो हिस्सा है, हम ही में से किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का चचा है, इसी मुआशरे का हिस्सा। पाकिस्तानी है, कहीं बाहर से नहीं आया। वो वही कुछ बिहेव करेगा जो कुछ वो सीख के गया है, उसके रवैये वही होंगे। अब अगर एक बच्चा घर में ये देख रहा है कि बाप की इनकम जो है वो 7,000-8,000 रुपए है, घर में कई एक एयर कंडीशनर चल रहे हैं, जो टेलीफोन कनेक्शन हैं, कार मेंटेन हो रही है, अब वो देखता है कि टेलीफोन पे सारी शाम गैर मुल्कों में बातें हो रही हैं माँ बाप की, महीने के बाद एक आदमी आता है जो 1,000 रुपया बाप से ले जाता है और बाप बच्चे ही के जरिए देता है, ठीक है वो टेलीफोन वाला आया दे दो वरना वो बात नहीं कराएगा, एयर कंडीशनर चल रहे हैं, बिजली फूक रही है लेकिन वो बिल आ रहा है 150 रुपये का, लेकिन बिजली के महकमे का आदमी आता है वो हर महीने 1,000 रुपया ले जाता है, बाप वसाइल से ज्यादा जिंदगी गुजार रहा है। बच्चे ऐसे सब बड़े होते हैं, समझते हैं चीजें। जब वो खुद जॉब पर जाएंगे तो उनके लिए तो ये इतनी बड़े जुर्म कोई जुर्म नहीं है, तो रिश्वत लेना कौन सा जुर्म रह जाएगा? तो उनका बिहेवियर यही कुछ होगा, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर बैठ के काम करे। घर में देख रहा है बाप को कि बाप मौजूद है लेकिन दोस्त को मिलने आया, वो बच्चे ही से कह रहा है जाके कह दो कोई नहीं, तो झूठ की तरबियत तो उसने हासिल कर ली, पर्दा डालना उसने देख लिया। तो मामलात हमारे कैसे ठीक होंगे? यूं मैं चाइल्ड एजुकेशन पर जोर दे रहा हूं कि न सिर्फ चाइल्ड एजुकेशन, इस तरह से राइज कीजिए कि सिविक सेंस डेवलप हो जाए, हमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो जाए, बल्कि खुद घर के अंदर हम अगर एक्सरसाइज कर लेंगे इन चीज़ों को, तो जो बच्चे कल को बड़े होंगे, बड़े जिम्मेदार लोग होंगे, फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि इसको उतारो दूसरा लाओ ये फेल हो गया, और बदकिस्मती से हर आने वाला पहले से ज्यादा वर्ष साबित होगा, ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। जनाब तो ख्वाब का ये है कि एक बुनियादी चीज तो ये है कि ख्वाब आप दोपहर 2 बजे से पहले पहले बयान कर दीजिए, उसके बाद किसी को ना सुनाए वरना जाया हो जाता। दूसरी, ख्वाब के बारे में एहतियात ये करनी चाहिए कि ख्वाब सिर्फ उस आदमी को बताया जाए जिसको इल्म ताबीर हासिल है, अदरवाइज वो उसकी ख्वाब की ताबीर कुछ की कुछ बयान कर देगा अपने इल्म के मुताबिक, लेकिन क्योंकि साहिब इल्म नहीं है तो इम्कान ये है कि वो गलत हो, तो ख्वाब ज़ाया हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि ख्वाब में अगर कोई ऐसी चीज आप देख लें तो उसको जाहिर करना नहीं चाहिए, वो मुनासिब नहीं, क्योंकि उससे बाज़ का तफरा तफरी फैलती है, बाज़ का लोगों के ईमान डावाडोल होने लगते हैं और एटलीस्ट उनके जहन में सवाल उठते हैं, तो शक का हल्का सा आंसर जो पैदा होगा वो भी इंसान के लिए ठीक नहीं। बिल्कुल बजा है बात, इसलिए कि ये मुलाकात आप पर एतबार है, एक एतमाद है आपका, जिस तरह हमारा किसी मुलाजिम पर اعتبار ختم ہو جائے کہ یہ جا کے بات باہر کر دیتا ہے، ہم اسے دوبارہ بتاتے نہیں کچھ، اسی طرح پھر یہ چیزیں سلب ہو جاتی ہیں. تو اگر ملاقات ہو خواب میں کسی بزرگ سے تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں بالکل نہیں، تو اپنی ذات تک رکھنا چاہیے سب کو. روایات سے ثابت ہے یہ بات.
بعض وقت سچے بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی، آپ کہہ لیں ان خوابوں میں بعض ایسی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو فیوچر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور سم ٹائمز یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات آپ کی سچائی کی طرف ہے. ایسے خوابوں کو بعض دفعہ برے ٹائپ کے خواب آتے ہیں، ان کے لیے کوئی ان کا اثر زائل کرنے کا یا کوئی وہ جو دعا کوئی ایسی ہے جس سے جیسے کوئی برا خواب نظر آیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو معافی کرے؟ یا
سوائے اس کی اور کچھ نہیں کہ اللہ سے توبہ استغفار کر لیا جائے اور صدقہ دے دیا جائے، نہایت آسان کام ہے.